نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پیغام قرآن پارا نمبر 11 یا تزیرون سورة توبہ کی آیت نمبر 94 سے یہ پارا شروع ہوتا ہے اور سورة یونس کی کچھ آیات پہ پورا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو چیز ہم پڑھ رہے تھے وہ ہمارے عمل میں کتنی ڈھلی اور اب اس میں سے مزید کیا سیکھیں گے سورۃ توبہ نام سے ہی توبہ کی طرف مائل کرنے والی سورۃ دکھتی ہے ہم نے اس کے مضامین کا پیچھے بھی تجزیہ کیا تھا یہاں دوبارہ دہرائیں گے یہاں دہراتے ہیں پہلی 6 آیات سن 9 ہجری میں مشرکین سے متعلق تھی وہ ہو گئیں سن 8 ہجری میں مکہ پر حملے کے لیے جو ذہن سازی تھی وہ آیت نمبر 7 سے 24 میں کی گئی پھر اسی طرح 25 سے 37 اس میں 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات تھے اور 38 سے لے کر 129 یہ وہ حصہ جس کی اب کچھ آیات ہم پڑھیں گے یہاں غزوہ تبوک کے حالات اور واقعات پر بھرپور تبصرہ بھی چل رہا ہے اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ آج کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 100 صحابہ کرام کی پیروی اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم صحیح لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں تو ہم بھی وہیں پہنچیں گے جہاں وہ نکلے تھے بہترین دور کے لوگ ہیں والسابقون الاولون سے لے کر واتبعوہم بإحسان تک نتیجہ کیا تھا رضی اللہ عنہم ورضون یعنی یہ وہ ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دور میرا دور ہے اور اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے تو آج آپ میں اگر نیکی کے کسی کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہوگا اور انہی کو فالو کریں گے آیت 101 منافقین کے لیے دوہرے عذاب کی بات ہے کیونکہ مرادو علی النفاق بہت ہی ہوشیار ہو گئے نفاق پہ سرکشی کرتے ہیں یعنی ایکسپرٹیز ان کی اب اپنے نفاق کو چھپانے میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں پھر آیت 102 سے 106 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکنے پر اظہار ندامت کرنے والے دو گروہوں کا اس میں ذکر ہے کچھ تو ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے رہنے کے بعد افسوس کرتے ہیں تو واخرون اعترفوا بذنوبهم خلط عملا صالحا واخر سیئا تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ تھا یہ انشاءاللہ ہم ان آیتوں میں ہی دیکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیے 107 سے 108 مسجد قبا کی عظمت اور نام نہاد مسجد درار کی مذمت یعنی ہر کام نیکی کا نہیں لگتا لیبل سے دھوکہ نہ کھائیے بعض چیزیں اصل میں مسجد ہی دکھتی ہیں یا نیکی کا کام دکھتی ہیں لیکن ان کا مقام کیا ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل مدینہ کے اندر مسجد کی ضرورت نہیں تھی مزید کیونکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور مسجد نبوی بھی اس کو پورا کر رہی تھی اور جو ارد گرد کے سببس تھے جو کہہ لیجئے دیہی علاقے تھے وہاں مسجد قبا پہلے سے موجود تھی لیکن کچھ لوگوں نے اسلام کو زد دینے کے لیے لوگوں کو گروہوں میں بانٹنے کے لیے ایک اور عمارت اس نام سے تعمیر کی کہ نام اس پہ مسجد کا ہی لکھیں گے ورنہ تو چل نہیں سکتا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ آ کر ذرا اس میں دو نفل پڑھ دیں تاکہ نام بھی بن جائے کہ جی آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اوپننگ کی اور ہم نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا اور ہمیں تو آپ نے بہت اس پہ مبارکیں بھی دیں اور دعائیں بھی دی تو یاد رکھیے کہ جب مقصد برا ہو تو ایون مسجد بھی قائم کیجئے یہ بھی کل پکڑ کا ذریعہ بنے گی جب لوگوں کو بریک اپ کرنا اور اس طرح کے ناجائز طریقے جو کہ یہاں ہیں آگے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے پھر 109 سے 110 کردار کی پختہ تعمیر تقویٰ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہہ دی لَمَسْجِدًا أُسِّسَ لِلتَّقْوَى اور فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ لِلتَّقْوَى تقویٰ کا ذکر بہت ہے دیکھیے کہ دین کا کام کرنے سے پہلے تقویٰ آنا لازمی ہے ورنہ یاد رکھیے کہ وہ بس وہی بات ہے کہ چینی کے ڈبے پہ آپ نمک لکھ دیں تاکہ چونٹیوں کو دھوکہ لگ جائے بعض لوگ دین کے نام پر کچھ ایسی بے دینی کی باتیں بھی کرتے ہیں جو اسلام کی روح کو مجروح کرتی ہے اور مسلمانوں کے آپس کے اتحاد اور تنظیم کو پامال کرتی ہے تو ایسی ساری کوششیں جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں پھر اس کے بعد 111 کلمہ پڑھنے والا اللہ سے ایک عہد کر چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اس کو انشاءاللہ ہدایات میں دیکھیں گے کتنی خوبصورت آیت ہے एक सौदा है, जन्नत का सौदा है, डील की जा रही है कि अगर तुम वाकई जन्नत में घर बुक कराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ पाबंदियां अपने ऊपर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। 112, अल्लाह के महबूब बंदों के औसाफ, तौबा से शुरू करके इबादत करना, तारीफें करना, हम्द करना, सियाहत करना, अल्लाह के दीन के लिए इधर से उधर जाना, रुकू और सजदे करना, और मारूफ का हुक्म देना, और मुनकर से मना करना, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत करना, यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है एक बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बनने के बाद। वो दीन में कोई ऐसी चीज़ आने नहीं देता जो दीन नहीं थी, और ना कोई चीज़ निकालने देता है जो दीन नहीं थी। देखिए, इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। आज की बड़ी बड़ी कंपनीज इसी असूल पे चलती हैं, छोटी सी बात इग्नोर नहीं की जा सकती, सू कर देते हैं लोग। एक मरीज आपकी वजह से मरे तो छोड़े, सिर्फ बीमार हो जाए, गलत इंजेक्शन दे दीजिए, उस डॉक्टर का लाइसेंस ले लेंगे। आप नेकी के काम करते हुए भी अगर उसमें कहीं कमी बेशी करते हैं तो अल्लाह ताला का भी इतना ही क्लोज सर्किट सिक्योरिटी का निज़ाम है। तो इसके लिए हिफाजत करनी है अल्लाह की हदों की, और अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वह बशरिल मोमिनीन, फिर खुशखबरियाँ भी उन्हीं के लिए हैं। तो कितना केयरफुल रह के जाने की जरूरत। देखिए, हम कहते हैं गुनाह करने वाले मुश्किलों में पड़ेंगे, मुझे तो खौफ आता रहता है क्योंकि दिन रात हमारी तगोदो तो दीन के ही नाम पे है ना, कि कहीं कल हम ना पकड़े जाएं, नेकियां करते करते गुनाह लाजिम ना हो जाए। तो अपने लिए हमेशा एक दुआ किया करें कि अल्लाह, नेकी का काम करते हुए भी मुझे सही रखना, सीधा रखना, और मेरे से सही काम लेना। सहाबा करम बर्दाश्त नहीं करते थे अल्लाह के नबी के दीन में कोई किसी की रंगामेजी कर दे या कोई दीन का हिस्सा उसे निकाल दे। हम होते हम कहते क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके ना, बैठ के मस्जिद में बाद में एक हल्का सा बना के कुछ लोग बैठे। ये सहाबा के बिल्कुल आखिरी दौर की बातें थी, यानी अल्लाह के नबी के बाद की बात थी। तो एक सहाबी आए और आकर हाकिम वक्त जो मुसलमानों में से खलीफा थे उनको कहा कि कल मैंने देखा कि मस्जिद में लोग कुछ आए, नमाज पढ़ने के बाद एक हल्का बनाया, सारे मिल के इकट्ठे इकट्ठे अल्लाह का नाम लेने लग गए, जैसे कोरस में नहीं हम करते अल्लाहू बिस्मिल्लाह या कुछ ऐसे ही। उन्होंने कहा अच्छा, अगर कल भी ऐसा करेंगे ना तो मुझे बताना। उसने कहा अगले दिन देखा लोग यही कर रहे थे। फौरन वो सहाबी पहुंचे और उन्होंने इतना पुरसोज खुतबा दिया, वल्लाही कहने लगे अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपके अजवाज भी जिंदा हैं, और तुमने उनके दीन के ये हाल हुलिये बनाने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ आपको मुझे भी हमेशा याद रखनी है, अच्छा काम, अच्छी नीयत है, और तरीका भी अच्छा हो, और जहाँ की गलती होगी उस पर इंसान आंसरेबल हो। अगर जमा रहेगा तो फिर ये इस बात की खुशी भी है कि वो अल्लाह के लिए ये काम कर भी रहा है और करा भी रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली चीज़ जो इसमें हम देखेंगे, अगली आयत देखें 113 से 114, मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगना जायज़ नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसको बुलाया गया नहीं आया, जब उसने खुद अपने लिए जन्नत और इस्लाम पसंद ही नहीं किया और वो एक अल्लाह का बना ही नहीं, तो फिर खामखा उसको उसके लिए बख्शिश की दुआ करके उसकी रूह को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है। तो फरमाए माँ कान अल नबी जी वल्लज़ी आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन। फिर इसी तरह दुनिया में हिदायत की दुआ आप कर सकते हैं, लेकिन जो चला गया अनाउंस्ड शिर्क पे या कुफर पे चला गया, बस उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आयत 115 से 116, अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता, अल्लाह की आदत ही नहीं है। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम। अल्लाह ताला पहले पूरी हिदायत की हुज्जतें पूरी करता है, जैसे एक उस्ताद पहले पूरा पढ़ाता है, बताता है, समझाता है, लिखाता है, कलम पकड़ना बताता है, फिर उसके बाद कोई ना माने तो फिर उसको पूछता है। रात जाते किसी बंदे से तो इंसान ये सवाल नहीं कर सकता ना। फिर आयत 117, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर अल्लाह ताला की नज़र करम है, यानी अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है उनके ऊपर। लक़द ताब अल्लाहु अलन नबी जी वल मुहाजरीन वल अंसार क्योंकि अल्लज़ीन तबहू फ़ी सात अलुसरा, क्योंकि इन्होंने मुश्किल घड़ियों में इस्लाम का और अल्लाह के नबी का साथ दिया है, तो अल्लाह ताला इनकी फिर कदर बहुत ज़्यादा करते हैं। आयत 118, ग़ज़वे तबूक में अदम शिरकत पर नादिम होने वालों की बख्शिश का ऐलान। वलसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिम अल-अर्ध बिमा रहुबत वदाक़त अलैहिम अन्फुसुहुम, यानी ये वो लोग थे जो बिला किसी उज़र के पीछे रह गए, और आकर झूठ बोलने और बताने, झूठे बहाने करने की बजाय साफ साफ कह दिया अल्लाह के नबी सुस्ती थी, बस ये हमारी ही वजह। अल्लाह ने फिर इनके लिए एक बख्शिश का तरीका रखा था, और उतना लॉकडाउन रहा, पूरे मदीना में कोई इनसे बात नहीं कर रहा था, सलाम करते तो जवाब ना होता, और बिलाखिर ये नमाज़ों में आते रहे, और फिर अल्लाह ने जब इनकी तौबा कबूल की तो उसके बाद वही सहाबा जो भी उनकी बात सुन के अनसुनी करते थे वो उनको मुबारक देने के लिए पलटे। क्या खूबसूरत डिसिप्लिन था मदीना शहर का कि आज लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे गवर्नमेंट के कहने पे, और कहाँ लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात पे इशारे को करने को तैयार थे। अल्लाह ताला आज हमें भी यही इताअत और यही सबमिशन अता फरमाए। फिर आयत 119, तकवा इख्तियार करने के लिए जमात से जुड़ना ज़रूरी है। कौन सी जमात? कोई नाम रखा हुआ है अपने? नहीं, याद रखिए इससे मुराद वो गिरोह है जिससे आप अपने रब के करीब महसूस करते हैं। और अमूमन देखिए ये वही गिरोह होता है जहाँ से इंसान सीखता है। वो आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात की जगह है, वो आपके लिए हिरा बन जाती है, वो कोहे तूर बन जाता है। हत्तुल बसा कोशिश कीजिए कि जब आपको दीद मिले और जहाँ से मिले वहीं जुड़ें। जितनी वो आपकी कदर करेंगे दूसरे कोई नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? ये बात में समझने की बातें। अभी इतनी बात समझ लीजिए कि सबसे बड़ा फितना जो शैतान दिमागों में डालता है वो कहता है मैं किसी के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकता, मैं अपने ओन पे हूँ। क्योंकि आसान लगता है ना, मर्जियाँ जो करनी आसान है तो मर्जियाँ करने लिए आगे नहीं बढ़ते। फिर उनको भी कोई जमात बनानी पड़ती है, किधर से लाएंगे? उसी में से निकाल कर लाएंगे। और कह लीजिए कि तकवा नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, बाहर वो भी दीन का ही काम है। इस सूरत में देखिए दूसरी जगह जहाँ ये बात आ रही है, और ख़ास तौर पर यहाँ फिर कूनू मअ सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो जिनको दिल से सच्चा कहते हो, फिर उनका साथ भी दो। फिर इसी तरह 120 से 121, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़कर होनी चाहिए। ज़रा अपने ऊपर लेकर सोचिए, ला यरगबू बी अनफुसिहिम मन नफ्सिही। क्या मुझे अल्लाह के नबी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है? याद रखिए ईमान का लीस्ट मिनिमम तकाजा है। हज़रत उमर फारूक से एक मौके पे आपने ये पूछा था तो उन्होंने सच बोला, कहा हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे जान ज़्यादा प्यारी है। तो कहे उमर, तेरा ईमान का पूरा ही नहीं हो सकता। तो वो लोग जो दीन के तकाज़ों के ऊपर घर से निकलते वक्त अल्लाह के नबी से पीछे रह जाएं, वो मेहनतें करें, वो जाएं, वो सहराओं में जाएं, वो भूख प्यास सहें और ये घर में बैठे रोटियां खाते रहें और साग खाते रहें और मौज मस्तियां करें, शौहर बीवी एक दूसरे के साथ इस तरीके से वहाँ खेतियों बाड़ियों के करने के बाद लंच को एंजॉय करते रहें, और अल्लाह के नबी ने पता नहीं खाना भी खाया है। तो ऐसे लोग जो अबू खैसमा जैसे लोग थे वो ये बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह ताला ने उन्हीं का यहाँ बड़े प्यार से जिक्र किया है, अपना खाना छोड़ा, घोड़े को एड़ लगाई और थोड़ी ही देर में लश्कर इस्लाम से जा मिले। इन्हीं का जिक्र है कि ये कैसे हो सकता है कि ला युसीबुम ज़म्मा वला नसब वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह। ना इनको प्यास लगी इस रस्ते में, ना मेहनतें हुई, ना भूख सही, बल्कि कोई कदम ना ऐसा उठाया जिससे काफिरों को गुस्सा दिलाया जाए, और दुश्मनों से कुछ लिया ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी की ज़ात से अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यार करते हैं, इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिहुन, अल्लाह कुछ किए बगैर भी उनके अमल सालेह लिख देता है। 122, इल्म में दीन सीखने की अहमियत है। वमा कानल मोमिनून अली यनफिरु काफा फलाउल नफरा मिन कुल्ली फिरकत मिनहुम ताइफा। आज भी दीन सीखने का यही अंदाज होगा तो इंशाल्लाह बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरे मुआशरे में इल्म का जाल फैलेगा, जैसे जिस्म में ब्लड फैलता है। आप देखिए कि मेन यूनिट हार्ट है, वो कंप्रेस होता है, फूलता है, खुलता है, बंद होता है, उससे ब्लड प्रेशर पैदा होता है, वो प्रेशर ही पूरे जिस्म में खून को ले जाता है। अब वो मोटी मोटी वेन्स जो कि दिल के पास होती हैं, आपकी उंगली तो उससे भी बारीक है, तो वो वेन तो वहाँ खून नहीं पहुँचाएगी ना। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद कैपलरीज और आर्टरीज का एक निज़ाम बनाया, जाल फैला हुआ। कभी स्किन का कोई पिक्चराइज वर्जन देखिए तो पूरे जिस्म में ऐसे छोटी छोटी वेन्स हैं। ये है इल्मे दीन सीखने का तरीका। बड़े सेंटर्स में जाइए, सीखिए, पूरा लीजिए, फिर अपनी अपनी बस्तियों और सबर्ब्स और कच्ची बस्तियों में जाकर लोगों को सिखाइए। आप वो बहुत बड़ा एक आलम दीन नहीं भी बन सकेंगे ना, तो आप एक पतली सी कैपलरी बनकर अपने इलाके में दीन सिखाएं। शर्त एक है कि पीछे से दिल से राबता जुड़ा हो। राबते टूटते हैं ना तो क्वालिटियाँ ख़राब हो जाती हैं। और आज यही है हमारे मसले कि हम दीन के नाम पे जो काम शुरू करते हैं कुछ दिन के बाद या महीनों के बाद चौपट भी हो जाता है, और बाज़ अवज़ में क्या कुछ खराबियाँ भी निकल आती हैं। फिर आयत 123, इस्लामी इनकलाब की तौसी, वसत। इस्लाम जो है कह लीजिए कि एक रेवोल्यूशनरी रिलीजन है, और इसके अंदर स्टेगनेंटनेस नहीं है कि आप बैठे रहें और मज़े से आप इस मुसलमान भी बनते जाएं, ऐसा नहीं होता। फिर आयत 124 से 125, कुरान पाक की तासीर मोमिनों पर मुख्तलिफ और मुनाफिकीन पर कुछ और। जैसे बारिश का पानी फूलों की क्यारी पे पड़ता है ना तो खुशबू आएगी, और कचरे और कूड़े के ढेर पे पड़ेगा तो बदबू आएगी। मोमिन का दिल फूलों की क्यारी है, उस पे इस वक्त भी कुरान की बारिश पड़ रही है तो उसके अंदर से खुशबू आएगी, अमल की खुशबू, अकीदे की सलाह, अपने नफ्स के बुत को तोड़ने की खूबसूरतियाँ। इसके बरक्स मुनाफिकीन का हाल क्या होता है, अगली आयतों में भी देख ले, 126 से 127। मुनाफिकीन के लिए बार बार जिल्लत उठानी पड़ती है उनको, क्योंकि अंदर जो खोट है तो खोट तो खुलेगा ना, तो वो फिर इल्म की महफिलों में बहुत मिसफिट फील करते थे। वाइजा माउनजिला सूरत नजर आबाद हो मिलावा कनखियों से अपने दोस्तों को साथियों को भी देख रहे होते थे कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं, ये तो सारी तुम्हारी बातें हैं, क्योंकि सच बात है अंदर बीमारी थी तो फिर ये तो लगेगा ना कि ये मेरा ही जिक्र हो रहा है। इसी तरह 128 से 129 जो सूरत की आखिरी आयतें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत का जिक्र है। हरीस अलैकुम, अल्लाह हमें भी यह हिर्स लगा दे कि हमने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है और उनकी ज़िंदगी से खराबियां और बुराइयां दूर करनी है। आज अगर आपको मुझे ये हिर्स लग गई है ना तो आप देखेंगे कि इसके बाद कितनी खूबसूरती होगी, कितना बड़ा चेंज आएगा, मुआशरे बदलेंगे, हालात बदलेंगे, और एक वक्त आएगा कि आप इस मुआशरे में अल्लाह के नबी के इस दीन को फलता फूलता देखेंगे। अल्लाह ताला हमें इसका जरिया बना ले। तो ये थी छोटे लेवल पे आयात की तफसीर। अब चलते हैं कुछ चीदा चीदा हिदायात, कुछ गाइडलाइंस। तो सबसे पहली चीज़ आयत 103, सदकात का हासिल, क्यों सदकात दिए जाए लिए जाए, उसके तौर तरीके क्या है, मैनर्स एंड एटिकेट्स क्या हैं। हुस्मिन अम्वालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके माल में से सदका कबूल कीजिए और ताकि इसके ज़रिए से आप इन्हें पाक साफ़ कर दें और इनके हक़ में दुआ खैर कीजिए। बिला शबाब की दुआ इनके लिए तस्कीन का सबब होगी और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। क्या पता चला, जब कोई किसी के पास अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ लाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे मिलाता है, किसी प्रोजेक्ट में देता है, तो उन लोगों को चाहिए कि उनसे कबूल करें ज़ाहिर पे क्यास करते हुए। दूसरी बात है कि उनका तज़किया होगा इससे, और फिर उनके लिए दुआ कीजिए। दुआए खैर ज़रूर करनी चाहिए नेकी करने के लिए वालों के लिए, नेकी करने वालों के लिए, चाहे वो माल लगा रहे हैं या जान लगा रहे हैं या सेहत या वक्त लगा रहे हैं, इससे तस्कीन मिलती है। देखिए दुआ जो होती है ना, ये मोटिवेशन देती है, तारीफ़ें नहीं। ये नहीं कहा वसल्ली अलैहिम की बजाय कहा कि उनकी तारीफ़ करो, तारीफ़ भी हो सकती है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन तारीफ़ के वजह से काम करना और तारीफ ना हो तो छोड़ देना, ये अगले का तज़किया नहीं होने देती। तो तज़किया के लिए लाजमी, आपके लिए भी एक असूल है, आपके बच्चे को अच्छा काम करे ना तो उनको दुआ दिया करे, सामने दिया करे, अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत में ये देना, बजाय इसके आप कहते मेरा बच्चा देखा कितना अच्छा, एकदम अंदर हवा भरेगी, फूं भां करेगा, रकड़ेगा। इसी तरह याद रखिए, कोई कमी बेशी हो ना तो उसको भी बता दे, ये भी मोहब्बत का तकाजा है कि आप किसी के काम में कोई कमी बेशी देखें। एक तरीका यह कि छोड़े जी हमने नहीं आपसे कराना, बस एनफ इज़ एनफ। और दूसरा ये कि उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि भाई ये छोटी सी जा चीज़ है, इसको ज़रा इस साइड पे कर दीजिए। तो देखिए दोनों का काम अगर अल्लाह के लिए होगा तो ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। फिर आयत 111, आला तरीन सौदा, बिजनेस डील, ट्रेडिंग, जन्नत का सौदा। सोचिए आप जन्नत खरीदने के लिए एक डील करने वाले हैं, दिल में शौक है, ज़ौक है, इसका एहसास है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, अल्लाह ने हमारी जानें हमारे माल खरीद लिए, बदले में जन्नत मिलेगी। अगर आप मोमिन हैं तो इस आयत को सुनकर तो आप खुशी से उछलेंगे। अल्लाह ने आपको मुझे एक बहुत कीमती इंसान बनाया, अब आप चाहें तो अल्लाह के हाथों बिक जाएं तो अपने आप को अनमोल कर दें। वो कहते हैं ना कि तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया, वरना मेरी क्या बोली लगनी थी इस दुनिया के बाजार में। यकीन कीजिए अल्लाह कटे फटे जिस्मों को कबूल कर लेता है, उनकी इतनी कीमत लगाता है कि युकातिलून फी सबीलिल्लाही फयक्तुलून वयुक्तलू। दुनिया में कटी फटी चीज़ को लोग ट्रैश कर दें, अल्लाह उनको उठाकर जन्नतों में ले जाता है और कहता है कि रहो इसमें मज़े करो। दूसरे कुछ लोग हैं जो अल्लाह के हाथों में बिकना मुश्किल लगता है उनको, वो मुआशरे के हाथों बिकते हैं, और कुछ अपने हाथों। यानी तीन चीज़ें हैं, पीपल प्लीजर, सेल्फ प्लीजर एंड अल्लाह प्लीजर। मोमिन हमेशा अल्लाह प्लीजर होता है, उसकी ज़िंदगी की हर खुशी और हर गम, हर जज्बा और हर उसके अंदर की चीज़ फुलफिलमेंट अल्लाह की खुशी के साथ मशरूत है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह नाराज़ और बंदा खुशियाँ मना रहा हो कि बच्चे की शादी जो आ गई झूम झाम के, और क्या जवानी आई है तो अब इसमें तो मैं झूमूंगा, नहीं। ये हो सकता है कि बंदा किसी वक्त पे परेशान है, बीमार है, और अल्लाह ताला उससे राज़ी हो रहा है, ये कभी नहीं आज तक दुनिया में हुआ। कि बंदा इधर खुश हो रहा और अल्लाह को उस पर गुस्सा आ रहा हो, तो अपने लिए सोचिए और ये सारी लिस्ट तैयार कीजिए। अल्लाह के रस्तों में निकलना, जान भी गई तो जाने दीजिए, फिर क्या, जान दी दी हुई, हक तो यह कि हक अदा ना हुआ। और फिर आप देखिए कि ये सौदा सिर्फ कुरान में नहीं है, दुनिया की तीन द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स अपने अपने वक्त में जो थी उनका रेफरेंस है, तौरात वल इंजील वल कुरान। क्या ये वो तौरात है जो आज मौजूद है बाइबल की सूरत में? नहीं, ये वो किताब जो पहले मौजूद थी और आज चेंज हो गई, और इसी तरह से बाकी भी किताबें। फस्तब शिरू बिबई कुमलसीबा या तुम भी, आपको मुबारक दी जा रही है। अक्सर कभी कोई डील हो जाए तो मर्द घर आते हुए थोड़ी सी मिठाई और लड्डू ले आते हैं, बेगम ये खाइए आज बड़ी अच्छी डील हो गई है, तो आप भी ज़रा ये लड्डू खा लीजिए। आपने अल्लाह ताला के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, फ़ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तो जब एग्रीमेंट करें तो फिर किस्तें देनी पड़ती हैं, इंस्टॉलमेंट होती है, ये डाउन पेमेंट है, अब ये अगले हफ्ते में ये देंगे और 2 हफ्ते में मैं पूरा दे के फारिग हो जाऊंगा, इसी तरह डील्स होती है ना। तो अब ये देखिए जन्नत की डील की 9 शराइत हैं। एक ऐसा किरदार मतलूब है उस जन्नत में जाके रहने के लिए जिसमें कुछ खूबियाँ हों, क्योंकि जो बहुत हाई स्कैटी के लोग होते हैं वहाँ हर एक को आने की इजाज़त नहीं होती। तो अहले जन्नत की 9 सिफात आयत 112 में देख लीजिए, अताइबून अलआबिदून अलहामिदून असाइहून से लेकर वलहाफिजून अलीहदूदिल्लाह। किरदार साजी है ये किताब, कुरान करेक्टर बिल्डिंग की किताब है जो आखरत ओरिएंटेड बना देती है। बंदा अच्छा इधर होता है और नाम उसका जन्नत के बहुत पौश इलाकों में लिखा जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम इस कैलिपर के हो जाएं कि वहाँ हमें जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर आयत देखिए 118, अल्लाह ताला के हजूर तौबा क्या है। कभी कभी तौबा के लिए दुनिया में मुजाहिदे भी करने पड़ते हैं, ये आयत उसकी दलील है। काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये तीन वो लोग थे जो बिल्कुल सच बोलने की बुनियाद पे आजमाए गए। मुनाफिकीन ने झूठे सच्चे उजर दिए, क्या बताऊँ मजबूरी बड़ी थी, हाँ लॉकडाउन तो था पर घर में ये था वो था, बच्चे घर थे, बस क्या बताएं मर्दों के साथ क्या काम करें और हम तो परेशान जो ये। अल्लाह के नबी ने क्या कहना था, कहा जो अल्लाह तुम पर रहम करें। लेकिन ये तीन लोग आगे बारी बारी, कहा अल्लाह के नबी सच बताऊं बातें बड़ी अच्छी आती हैं करनी पर नहीं करूंगा, झूठ भी बोलूंगा ना तो आपके दिल पर अल्लाह वही से असल बात खोल देगा। फिर अल्लाह ने कैसे उनको आजमाया लॉकडाउन में, असल ये लॉकडाउन था, ये जो आपको कोरोना वायरस का लॉकडाउन है वो यही सिखा रहा है कि अपने आप को खुद लॉकडाउन करो, गुनाह हो गया अपने आप को दूसरों से दूर करो ताकि तुम्हारे जरासीम न उन तक पहुंचे, और खुद को जरासीमों वाले गुनाहों वालों से दूर रखो, कहीं तुम उनकी सोहबत में और उनकी कंपनियों में और उनकी पार्टीज और उनकी किटी कटीज और उनके कपड़ों ड्रेसेस को देकर तुम ना बिगड़ जाओ। अल्लाह ताला हमें सच्चा मोमिन बना दे। फिर आयत 128, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए शफकत, हरीस अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लोगो आ गए तुम्हारे पास एक रसूल तुम ही में से, तुम्हारी तकलीफ इनको गिराव मालूम होती है और तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। सच बताएं कोई है हमारे लिए इतना तड़पने वाला जितना अल्लाह के नबी तड़प गए, और मोमिनों पर निहायत शफीक और मेहरबान है। अपने वक्त पे तो माँ बाप की भी बात नहीं लोगों को अच्छी लगती, बच्चे हमेशा माँ बाप को दुश्मन ही समझते और कहते मेरे माँ बाप बहुत सख्त हैं, दे आर सो रिजिड। अल्लाह के नबी के बारे में देखिए, क्या रातों को जागे और दिन को जागे, रातों को अल्लाह के सामने रो रो के हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे और दिन में कुम फानजिर का फरीजा अंजाम दिया। रात को क्यामुल्लैल था तो दिन में क्यामुन्नहार था, लेकिन आज उम्मत का हाल क्या है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम कर दे। तो सूरह तौबा बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ पूरी होती है।